आज है 11 मई दिन बृहस्पतिवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने सुनवाई शुरू की। मौलाना कहते हैं ये मजहब का मामला है।
कोर्ट को अगर लगता है कि ये मुतसादिम है तो कोर्ट को मजहबी उलमा को मुखातब करना चाहिए कि आप बैठ करके इसका हल निकालिए। उलमा बैठेंगे, हल को निकालेंगे।
पर तलाकशुदा मुसलमान औरत क्या कहती है?
मजहब में तो कहीं नहीं है कि किसी औरत को आप 3 बार तलाक कहकर उसे घर से बेघर कर दे।
याद करेंगे शास्त्री गायिका स्वर्गीय किशोरी आमोनकर को।
इतनी बड़ी लेजेंड होने के बावजूद हर कॉन्सर्ट से पहले वो नर्वस होती थी। अब बताइए कि इतनी बड़ी गान सरस्वती नर्वस क्यों होती थी? क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट थी।
पर ये सब विश्व समाचारों के बाद।
बीबीसी समाचार निखिल रंजन से। भारत की सर्वोच्च अदालत में 3 तलाक से जुड़ी याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। 3 तलाक को कई मुस्लिम देशों ने गैरकानूनी ठहरा रखा है, लेकिन भारत के अल्पसंख्यक मुस्लिमों में इसे वैधता हासिल है। मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए 3 तलाक के खिलाफ याचिका दायर की है, लेकिन बहुत से मुस्लिम संगठन और धर्मगुरुओं का कहना है कि 3 तलाक पर रोक लगाना उनके धार्मिक मामलों में दखलंदाजी होगी। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। 5 जज अलग अलग धर्म के हैं। भारत की पुलिस जस्टिस कर्नन को गिरफ्तार करने में अब तक सफल नहीं हो सकी है। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के इस जज को अवमानना का दोषी मानते हुए 6 महीने के लिए जेल की सजा सुनाई थी। इस मामले में आ रही खबरों में कहा जा रहा है कि पुलिस ने जस्टिस कर्नन की तलाश में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में छापे मारे हैं। जस्टिस कर्नन ने सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों को कथित भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सजा सुना दी थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जाए इन से अमरीकी रक्षात्मक मिसाइलों की तैनाती रद्द करने को कहा है। नए दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के कार्यभार संभालने के एक दिन बाद फोन पर बातचीत के दौरान शी जिनपिंग ने ये बातें कही। कई महीनों से चीन दक्षिण कोरिया में मिसाइलों की इस तैनाती का विरोध कर रहा है। ये मिसाइल उत्तर कोरिया से मिसाइल हमले की आशंका को देखते हुए तैनात किए जा रहे हैं। जवाब में मून जाई इन ने कहा है कि चीन की सरकार इन मिसाइलों की तैनाती की वजह से दक्षिण कोरियाई कंपनियों के साथ भेदभाव कर रही है। इराकी सेना प्रमुख ओटोमान अल गनीमी ने कहा है कि उनकी सेना मुसल में अपना अभियान खत्म करने के कगार पर पहुंच गई है। बीते साल अक्टूबर में इराकी सेना ने कथित इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों से मुसल को छुड़ाने का अभियान शुरू किया था। लेफ्टिनेंट जनरल अल गनीमी ने बीबीसी से कहा, सुरक्षा बल बड़ी और असरदार कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर अल्लाह ने चाहा तो दाइश कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। मेरी माने तो मुसल का बाकी हिस्सा रमजान के महीने से पहले आजाद करा लिया जाएगा। संयुक्त कमान ने एक योजना पर काम किया है। दुश्मन को हराया जा रहा है। आम नागरिकों को उनके स्नाइपरों के जरिए कवच की तरह इस्तेमाल करना ही हमें रोक रहा है। इराकी सेना प्रमुख अल गनीमी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। लंदन में चल रहे सोमालिया कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि सोमालिया में 60 लाख से ज्यादा लोगों को मदद की जरूरत है। 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे भूखमरी के शिकार हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि चुनौतियों के बावजूद इस बात के मौके हैं कि हाल में हुई प्रगति को आगे बढ़ाया जाए और ऐसा देश बनाया जाए जो वास्तव में काम करे। सोमालिया को फिर से सुरक्षा का माहौल बनाना है, पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है, साथ ही सूखे की समस्या से निपटकर भूखमरी को रोकना है। लेकिन मैं चुनावी प्रक्रिया के दम पर लंबे स्थिरता हासिल करने के मौके के तौर पर भी इसे देखता हूं। हमारे पास एक मजबूत प्लेटफॉर्म है जिस पर हम सुरक्षा को बेहतर, संघीय ढांचे को गहराई और विवादों का निपटारा और समझौतों को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद संविधान की समीक्षा को पूरा कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेस के शब्द। ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया के नाम से विख्यात विकिपीडिया पर तुर्की में लगी रोक को हटाने के लिए उसे वहां दफ्तर खोलने और टैक्स देने को कहा गया है। तुर्की के परिवहन मंत्री अहमद अरसलान ने एक टीवी चैनल से कहा कि विकिपीडिया एक गलत धारणा बनाने में जुटी है कि तुर्की आतंकवादी संगठनों का समर्थन करता है। विकिपीडिया के एक पन्ने में आरोप लगाया गया है कि तुर्की पड़ोसी देश सीरिया के इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों के साथ या तो मिल गया है या फिर उन्हें रोकने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर रहा। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। मैं हूं राजेश जोशी। तलाक शब्द को तीन बार दोहराकर शादी तोड़ लेने वाले मुसलमान मर्दों को क्या वाकई इस तरीके से अपनी पत्नी से रिश्ते खत्म करने का हक है? सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों ने आज इस सवाल पर सुनवाई शुरू कर दी है। तीन तलाक की प्रथा को बहुत कम देशों के मुसलमानों में माना जाता है, पर परंपरागत रूप से भारतीय मुसलमान तीन तलाक प्रथा को मानते आए हैं, मगर अब मुसलमान महिलाओं के कई संगठन इस प्रथा को बंद करना चाहते हैं। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठन मानते हैं कि ये मुसलमानों का निजी मामला है और इसमें अदालत को दखल नहीं देना चाहिए। शकील अख्तर की रिपोर्ट।
पिछली जनगणना के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं में तलाक की दर हिंदू महिलाओं के मुकाबले दुगनी थी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय की एक विशेष पीठ तीन तलाक और उससे जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही है। मुस्लिम उलमा का कहना है कि ये उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। जमीयतुल उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी कहते हैं,
मजहब की तशरी मजहब के जानने वाले लोग करेंगे।
अगर वो मुल्क के आइन से मुतसादिम है,
कोर्ट को अगर लगता है कि ये मुतसादिम है तो कोर्ट को मजहबी उलमा को मुखातब करना चाहिए कि इसके अंदर ये मुतसादिम हमें इसलिए लग रहा है, इसलिए लग रहा है, इसलिए लग रहा है, आप बैठ करके इसका हल निकालिए। उलमा बैठेंगे, हल को निकालेंगे।
भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के एक सर्वे के अनुसार एक बार में तीन तलाक के तरीके से महिलाओं को नुकसान पहुंच रहा है। संगठन की एक कार्यकर्ता नूरजहां कहती हैं कि महिलाएं इसमें परिवर्तन चाहती हैं।
88% महिलाओं का ये कहना था कि तलाक एहसन का जो तरीका है, जो कुरान शरीफ में भी लिखा है, वो तरीके से तलाक हो। तो चाहे तलाक आदमी को चाहिए हो या तलाक औरत को चाहिए हो, उसका जो तरीका होता है वो कॉमन होना चाहिए, जिसमें 3 महीने का मिनिमम वक्फा हो, एक गैप हो।
डॉक्टर ताहिर महमूद जैसे इस्लामी कानून के ज्ञाता एक अरसे से तलाक के तरीके में सुधार करने का समर्थन करते रहे हैं।
ये बात तो बाद में देखी जाएगी कि तीन तलाकें जो हैं ये दस्तूर के मुताबिक हैं या नहीं, दस्तूर से इनका कोई क्लैश, कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं। पहले तो ये देखिए कि कुरान से कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं, तो कुरान से तो कॉन्फ्लिक्ट ही है, कुरान में तो इजाज़त नहीं है इस तरह की।
उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व जज जस्टिस मार्कंडे काटजू जैसे विधि विशेषज्ञों का विचार है कि ये कानून बहुत पुराने हो चुके हैं और इनमें संशोधन की आवश्यकता है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ देखिए ये बिल्कुल आर्केक लॉ है, पुरानी आउटडेटेड लॉ है, ये ट्राइबल फ्यूडल सोसाइटी की लॉ थी, इट हैज नो प्लेस इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब ये जो कानून है कि तलाक तलाक ओरल तलाक, ये बिल्कुल इनह्यूमन है, इंसानियत के खिलाफ है।
मुस्लिम उलमा आजादी के 70 वर्ष बाद भी एक मॉडल निकाहनामा या तलाक का एक उचित तरीका तक न तय कर सके, लेकिन अब ये मामला उनके हाथ से निकल चुका है। उच्चतम न्यायालय अब इस बात की समीक्षा कर रहा है कि मुसलमानों में तलाक का जो चलन है क्या वो इस्लाम के मुताबिक है, और देश के संविधान ने सभी नागरिकों को बराबरी का जो अधिकार दिया है क्या वो मुस्लिम महिलाओं को मिल रहा है। शकील अख्तर, BBC दिल्ली।
फिलहाल स्थिति यह है कि पति तीन बार तलाक कहकर पत्नी को छोड़ सकता है। एक तलाकशुदा महिला को किस दौर से गुजरना पड़ता है ये जानने के लिए मैंने जयपुर की अफसाना से बात की, जिन्हें उनके पति ने एक चिट्ठी के जरिए तलाक दे दिया था। मैंने अफसाना से पूछा कि एक तलाकशुदा औरत पर क्या बीतती है।
मैं इस दौर से गुजर चुकी हूँ, तो मुझसे बेहतर तो कौन बताएगा कि उसके बाद क्या होता है, क्या बीतती है उससे।
एक मुसलमान औरत होने के नाते आपको क्या लगता है कि आपके मजहब में कहा गया है ये, या ये मर्दों ने बनाई है बात?
ये तो देखा जाए तो मर्दों की बनाई हुई है, मजहब में तो कहीं नहीं है कि किसी औरत को आप तीन बार तलाक करके उसे घर से बेघर कर दे, साथ में उसके 3 बच्चे और छोटे छोटे, तो ऐसा तो कहीं मैंने इस्लाम में न पढ़ा है न सुना है।
मैं आपकी आवाज से समझ रहा हूँ आपको बहुत तकलीफ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं आपसे आगे बात करूं, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं आपसे और पूछूं, उस वक्त जब आपके साथ ये हुआ, तलाक हुआ, क्या क्या मुस्लिम समुदाय ने, मर्दों ने, जो कौम के लोग हैं, उन्होंने किसी ने कुछ मदद की आपकी?
जी नहीं, किसी ने नहीं, बल्कि पूरा समाज एक तरफ था और मैं अकेली एक तरफ। सब लोग यही कह रहे थे कि इस घर में रहना गैर कानूनी है, नाजायज है, नहीं रहना चाहिए, इसको तलाक दे दिया है। अब मैं उन जो कहते हैं उनसे सबसे पूछती कि बताओ मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ, लेकिन मेरे सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, बस उनके पास सवाल थे कि यहाँ नहीं रहना चाहिए।
तो आप मौलवियों के पास गईं, आप मसाइल लेकर के गईं कुछ उनसे सलाह मशविरा के लिए?
अब वही थे, सब तरह के मौलवी थे, किसी ने कहा तलाक हो गई है, किसी ने कहा नहीं हुई है, मैंने कहा हुई है नहीं हुई है ये तो बात की बात है, अभी तो मेरे सामने मुद्दा ये है कि मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ।
आपके कितने बच्चे हैं?
जी मेरे 3 बच्चे हैं।
कैसे परवरिश कर रही हैं आप उनकी?
जी जी बहुत मुश्किल से परवरिश की मैंने, जूतियां जो बनती है जूतियों का काम किया, सिलाई वगैरह किया, चूड़ियों का किया, अब तक कर रही हूँ।
तो आपको दिमाग में कभी ये जहन में सवाल नहीं आया कि आप एक, मुझे लगता है, नमाजी मुसलमान हैं, नमाज पढ़ती हैं, इसके बावजूद जो समाज है उसमें आप अकेली छूट गई हैं, अकेली पड़ गई हैं?
जी जी अकेली पड़ गई हूँ। अब किसी को चला करके तो आप अपने साथ ला नहीं सकते, बस कुछ सहारा था तो इन संगठनों का था, जैसे निषाद मैडम हो गई, आपने नाम सुना होगा, वकारुल अहद का, बस इन कुछ गिने चुने लोगों का सहारा था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मुस्लिम औरतों को इससे निजात पानी चाहिए, इससे जो है मुक्ति मिलनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, क्या आप चाहती हैं कि ये पूरा रद्दोबदल हो जाए?
जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ठोस वजह हो तलाक देने की, जो आप तलाक दे रहे हैं उसका, वो भी तो बताया गया कि किस तरीके से है, उसकी जिंदगी का पूरा तय करिए कि कैसे मेरे बच्चे जिंदगी जिएंगे, कैसे इसको छोड़ना है तो कैसे करेगी, ऐसे थोड़ी है उठाया पत्थर मार दिया,
ऐसे थोड़ी के उठाया और पत्थर मार दिया। ये थी जयपुर की अफसाना।
बीबीसी इंडिया पोल।
क्या तीन तलाक के मुद्दे के बहाने राजनीति की जा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि इसे राजनीति का मुद्दा न बनाया जाए। क्या तीन तलाक ही मुसलमान औरतों की एकमात्र समस्या है? शिक्षा, रोजगार, बराबरी जैसे मुद्दे पर बहस क्यों नहीं होती? इस बार इंडिया बोल में इसी विषय पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 13 मई को शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब एक नजर एक अंतर्राष्ट्रीय खबर पर। चीन के नेता शी जिनपिंग ने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति मून जाए इन से अमरीकी मिसाइल रक्षा प्रणाली को खारिज करने को कहा है। उन्होंने मून से 40 मिनट तक फोन पर बात की और चीन की चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्ट सुना रहे हैं प्रभात पांडे।
अमरीकी मिसाइल प्रणाली को थार्ड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस कहा जाता है, जिसे लेकर चीन काफी चिंतित है और मानता है कि इसकी वजह से क्षेत्र की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। इसी कारण चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति मून जाए इन से बात की। मून जाए इन ने कल ही दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का पद संभाला था। शी जिनपिंग से बातचीत के दौरान उन्होंने शिकायत की कि अमरीकी मिसाइल प्रणाली स्थापित करने का बदला लेने के लिए चीन दक्षिण कोरियाई कंपनियों से भेदभाव करता दिख रहा है। बाद में बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा कि बातचीत काफी दोस्ताना थी।
आज की बातचीत में दोनों देशों के नेताओं ने कहा कि वो चीन दक्षिण कोरिया के संबंधों को काफी अहमियत देते हैं। दोनों ने रिश्तों को बढ़ाकर फिर से स्थिर करने की इच्छा भी जाहिर की। मैं सोचता हूं कि चीन दक्षिण कोरिया से संवाद बढ़ाने का इच्छुक है ताकि आपसी रिश्ते बेहतर किए जा सकें।
गेंग शुआंग के शब्द। उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम से चिंतित अमरीका ने 26 अप्रैल को दक्षिण कोरिया में मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली थार्ड लगाई थी, जिसके खिलाफ बहुत से लोगों ने दक्षिण कोरिया में विरोध प्रदर्शन भी किए। अमरीका थार्ड के जरिए उत्तर कोरिया से होने वाले मिसाइल हमले से बचाव करने का मंसूबा रखता है। इसके अलावा हाल ही में अमरीका ने कोरियाई प्रायद्वीप में युद्धपोत और पनडुब्बियां भी तैनात की हैं। उत्तर कोरिया को घेरने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की मदद लेने के संकेत भी दिए हैं।
ये रिपोर्ट आपको सुना रहे थे प्रभात पांडे।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन भर राजेश जोशी के साथ। आइए लौटते हैं एक बार फिर भारत की ओर। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में फांसी की सजा से बचाने के लिए भारत सरकार की याचिका पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 15 मई को सुनवाई करेगा। जाधव पर पाकिस्तान ने जासूसी का आरोप लगाया है और एक सैनिक अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है, जिसके खिलाफ भारत ने 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय अदालत का दरवाजा खटखटाया था। बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
भारत ने जाधव के मामले से पहले केवल एक बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख किया था। ये बात है 1971 की, जब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ एक मामला दायर किया था। पाकिस्तान ने इस संगठन से भारत की शिकायत कर रखी थी, इसमें संगठन ने पाकिस्तान का साथ दिया था, इसीलिए इस संगठन के खिलाफ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया, मगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारत के खिलाफ फैसला सुनाया था। इसके अलावा भारत ने 5 बार अलग अलग मामलों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सामना किया है, जिनमें से 3 बार मामले पाकिस्तान से जुड़े थे। खुद पाकिस्तान एक बार इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में घसीट चुका है। ये बात है 1999 की, भारत ने अपने क्षेत्र में पाकिस्तान के एक जल सेना विमान को मार गिराया था। अदालत ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया था। कारगिल युद्ध में भारत ने पाकिस्तान पर सौरभ कालिया नामी एक फौजी और उसके साथियों को मारने से पहले टॉर्चर का इल्जाम लगाया था। कालिया के परिवार की ख्वाहिश थी कि भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत करे, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवादों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। लेकिन अब जाधव के मामले में 8 मई को भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया है। भारत को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने की जरूरत क्यों पड़ी? भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले इसका जवाब यूं देते हैं।
भारत की सरकार ने कुलभूषण जाधव मामले में कौंसलर भेंट जो नहीं करने दी गई उसके संबंध में वियना कन्वेंशन ऑन कौंसलर रिलेशंस का जो उल्लंघन हुआ है पाकिस्तान के द्वारा, उसका संदर्भ लेते हुए किस किस बिना पर, किस किस आधार पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपनी याचिका 8 मई 2017 को दाखिल करी है। और उसमें इस बात का भी जिक्र है कि भारत ने किस किस प्रकार करके जो गुजारिश दरखास्त करी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, उसमें क्या क्या हमने कोर्ट से कहा है कि हमें क्या रिलीफ चाहिए, हमें किस प्रकार के निर्णय की हम अपेक्षा करते हैं।
भारत के कुछ विशेषज्ञों ने जाधव के मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक ले जाने के भारत के कदम की आलोचना की है। उनका कहना है कि अब कश्मीर के मामले में जब भी पाकिस्तान चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकता है। उनका कहना है कि भारत ने पाकिस्तान के मामले में किसी तीसरे पक्ष को शामिल करने से अब तक परहेज किया है। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया है। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
आज है बृहस्पतिवार और समय है आपकी राय का। हमें मालूम है आपको अपनी चिट्ठियों का इंतजार रहता है, जैसे कि हम हफ्ते भर आपकी चिट्ठियों का इंतजार करते हैं। लीजिए, प्रस्तुत है आपकी राय।
आपकी राय, आपकी राय में मैं हूं इंदु पांडे और आज मेरे साथ हैं,
नमस्कार, राजेश प्रियदर्शी की ओर से।
राजेश जी, चिट्ठियों का सिलसिला शुरू करें।
जी बिल्कुल।
पहला ईमेल जो हमारे पास आया है, ये हमारे नियमित श्रोता हैं जीशान नैयर बेगूसराय बिहार से। लिखते हैं कि बीबीसी हिंदी की पूरी टीम 77वें जन्मदिन पे हार्दिक बधाई, अब हम लोग बीबीसी हिंदी के टीवी चैनल की उम्मीद लगाए हैं।
बहुत धन्यवाद जीशान आपके इस शुभकामना संदेश के लिए। और भी बहुत सारे श्रोताओं ने हमें ये शुभकामना संदेश भेजे हैं। बहुत लंबा सफ़र रहा है बीबीसी हिंदी का पिछले इतने सालों का, और जिसमें हमने शुरुआत शॉर्टवेव रेडियो से की थी और अब इतना कुछ जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं, जिसमें रेडियो भी शामिल है, और ये काफ़ी उतार चढ़ाव वाला और लंबा सफ़र रहा है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात जो है वो अपने श्रोताओं का साथ है जो हमें लगातार मिला, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहेंगे और हमें पत्र लिखकर अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहेंगे।
और साथ ही निखिल रंजन जी की प्रस्तुति दुनिया जहान फटेहाल वेनेजुएला और वहाँ की बदहाल अर्थव्यवस्था सुनी, बहुत लोगों ने इस बारे में हमें चिट्ठी लिखी है। निखिल रंजन के लिए कहते हैं जीशान नैयर और जंग बहादुर सिंह गोल पहाड़ी से कि भाई बहुत अच्छा था वो सब कुछ।
वाकई ये बहुत ही दिलचस्प विषय है, और एक ऐसा देश जिसके पास इतना भंडार है तेल का, सिर्फ कुव्यवस्था की वजह से वो बदहाली के दलदल में फंस गया है और भारी आर्थिक संकट में है। ये लगता है किसी ने कविता लिख दी।
एक्चुअली कविता है
जी, दूर से मैंने देखा तो मुझे उसके वाक्य विन्यास से समझ में आया कि कविता है, सुनाइए।
ये है डॉक्टर लक्ष्मण झा, झारखंड दुमका से। कहते हैं कि आपका व्यथित श्रोता,
अच्छा,
बीबीसी का छलना,
दुख भरी कविता लिखी।
कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको सुनने के बाद दुख थोड़ा कम होता है और हंसी ज्यादा आती है
जी।
लिखते हैं कि बीबीसी का छलना हमको हृदय बेध कर दुख देते हैं। बीबीसी दुनिया भी रूठी, ई टीवी ने छोड़ दिया, फेसबुक और होम पेज से अपना नाता तोड़ लिया।
फेसबुक और होम पेज से क्यों नाता तोड़ लिया, वो तो है ही आपके लिए, आप उससे नाता जोड़ लें प्लीज।
और साथ कहते हैं कि रेडियो का अस्पष्ट प्रसारण कब तक हम बधिर रहेंगे?
रेडियो का जो प्रसारण है शॉर्ट वेव में, उसकी बहुत सारी तकनीकी समस्याएं हैं और हम बार बार अपने श्रोताओं से उसके लिए माफ़ी मांगते रहें, क्योंकि वो हमारे हाथ में, हमारे नियंत्रण में नहीं है। अब रेडियो का जो शाम वाला प्रसारण है वो फेसबुक पर भी उपलब्ध है। उसके अलावा आप हमारे दोनों कार्यक्रम फेसबुक पर और हमारे होम पेज पर सुन सकते हैं, हमारे ऐप के ज़रिए सुन सकते हैं, और BCO तरीके हैं हमारे कार्यक्रम सुनने के। ट्यून इन जैसे जो ऐप्स हैं उन पर भी हमारे प्रसारण सुने जा सकते हैं, और सुनाई जैसे वो देते हैं वो वाकई बहुत बेहतर क्वालिटी में आपको सुनाई देते हैं। तो अगर आपके पास ये विकल्प उपलब्ध हो, जैसा कि आपने हमें ईमेल भेजा है, तो मेरा ख्याल है कि आपके पास इंटरनेट की सुविधा है, तो आप उसका लाभ उठाएं और प्रसारण जब चाहें अपनी मर्जी से सुने।
और ये पोस्टकार्ड है अशोक कुमार ठाकुर, माली टोला, आदलपुर, दरभंगा, बिहार से। लिखते
बहुत अच्छा कि आपने कि एक पोस्टकार्ड एक दो ले लिए, वरना हमारे जो डाक से पत्र भेजने वाले श्रोता हैं अक्सर नाराज हो जाते हैं।
जी, इनको रेहान फजल की विवेचना बहुत अच्छी लगी जो हिटलर पर थी।
बहुत शुक्रिया, वाकई बहुत दिलचस्प थी रेहान की प्रस्तुति।
और इसके साथ साथ ये जो पोस्ट कार्ड है हमारे पास, ये है तुंगनाथ यादव का, देवगढ़ भड़नी देवरिया उत्तर प्रदेश से।
अच्छा,
इनका कहना है कि 15/4/2017 का सुबह के समय में जो गांधी के चंपारण पर यात्रा की व्यथा बताई थी आपने, व्यथा कथा, वो बहुत ही अच्छी लगी इनको।
बहुत धन्यवाद तुंगनाथ जी हमें पत्र लिखने के लिए। और इसी के साथ अब हमारा आपसे विदा लेने का समय भी आ गया है।
पता बता दें?
बिल्कुल, अगर आप हमें डाक से पत्र लिखना चाहें तो हमारा पता है BBC हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर ईमेल भेजना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार रहेगा, जरूर लिखिएगा। और आइए याद करते हैं किशोरी आमोनकर को। पिछले महीने 3 अप्रैल को इस मशहूर शास्त्रीय गायिका ने 84 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा। हाल ही में दिल्ली के नेहरू पार्क में आयोजित एक कार्यक्रम मारो प्रणाम में संगीत से जुड़ी नामचीन हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्वेता सिंह की पेशकश।
ये आवाज अब हमारे बीच मौजूद नहीं है, संगीत प्रेमी इस आवाज से बखूबी वाकिफ हैं। ये नाम है जानी मानी शास्त्रीय गायिका किशोरी आमोनकर।
पग घुंघरू बांध मेरा नाचे रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाचे रे।
पिछले महीने 3 अप्रैल को किशोरी आमोनकर ने इस दुनिया को अलविदा कहा। वे 84 वर्ष की थी। कुछ दिन पहले दिल्ली के नेहरू पार्क में स्पिक मैके द्वारा आयोजित कार्यक्रम मारो प्रणाम में शास्त्रीय गायिका किशोरी आमोनकर को संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोगों ने श्रद्धांजलि दी। किशोरी आमोनकर जयपुर घराने की जानी मानी गायिका थी। मशहूर सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान ने किशोरी आमोनकर को याद करते हुए कहा,
उनको जयपुर घराने की गायिका कहा जाता था या जयपुर अतरौली। उन्होंने उसी जयपुर घराने को एक नया रूप दिया, नया सोच दिया। शायद उस वक्त सिर्फ रेडियो था या इनके टाइम शायद रेडियो भी नहीं होगा, तो इन्होंने अपने गागा के रियाज करके जो इनके समझ में आया वो एक स्टाइल बन गई।
ठुमरी की रानी कही जाने वाली बनारस घराने की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के लिए किशोरी आमोनकर को श्रद्धांजलि देना एक भावुक पल था। किशोरी आमोनकर से जुड़ी यादों को गिरिजा देवी ने BBC के साथ कुछ इस तरह बांटा।
यादें तो इतनी ज्यादा है कि किताब लिखी जा सकती है, इतने छोटेपन से वो मिली हमको। कल के कलाकार में जब आई थी बॉम्बे में हरिदास सम्मेलन में, तो हमने पहला पुरस्कार उसको दिया था। मैं गाने के लिए गई थी और वो कल के कलाकार में आई थी, तो उस समय जब गाई तो ये 52 का किस्सा है। 47 में हमारा पाकिस्तान अलग हिंदुस्तान बना और रोशना रा बेगम बहन जो थी हमारी चली गई थी। तो हमने सबसे कहा कि हमको दुख था कि रोशना रा बेगम हमारे घर की शिष्या थी, हमारे गुरुजी के घर की, और पहले भी सीखी थी, तो दूसरी रोशनारा आ गई हमारे घर में, तो इसलिए इतना बड़ा चीज़ मैंने उसके लिए कहा था कि रोशनारा बहन चली गई लेकिन दूसरी रोशनारा बेगम आ गई।
दस अप्रैल 1932 को मुंबई में जन्मी किशोरी अमोनकर को हिंदुस्तानी संगीत की अग्रणी गायिकाओं में से एक माना जाता है। उन्हें करीब से जानने वाले ये मानते हैं और कहते हैं कि वो बहुत गुस्से वाली थी। उनके इस पहलू पर स्पिक मैके की डायरेक्टर रश्मि मलिक।
उनको गुस्सा तब आता था जब बात गलत होती थी, हमसे गलती होती थी, वो खुद भी म्यूजिक के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी। वो उनकी एक सबसे बड़ी खासियत आपको बताऊं, इतनी बड़ी लेजेंड होने के बावजूद हर कॉन्सर्ट से पहले वो नर्वस होती थी। आप बताइए कि इतनी बड़ी गान सरस्वती नर्वस क्यों होती थी, क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट थी और हर कॉन्सर्ट के बाद अपना कॉन्सर्ट एनालाइज करती थी। लोग कहते हैं वो एरोगेंट थी, वो एरोगेंट कुछ हद तक थी, कुछ उसके अलग अलग रीज़न है। जैसे उन्होंने अपनी माँ को देखा, इतनी बड़ी मग्गूबाई कुर्दिकर इतनी बड़ी गायिका थी, पद्मभूषण थी, लेकिन उनके साथ ट्रीटमेंट इतना अच्छा नहीं, उनके पास पैसे की भी कमी थी, लोग उनको उन ज़माने में बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। तो उन्होंने तभी मन में ठान लिया था कि जब मैं कॉन्सर्ट परफॉर्म करूँगी तो मैं ये सब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करूँगी, तो वो उनकी कुछ कंडीशंस थी।
श्वेता सिंह, बीबीसी दिल्ली।
श्वेता सिंह की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें लिखना न भूलिएगा। और अब वक्त है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों में मैं हूं आपके साथ इंदु पांडे। दिल्ली में इन दिनों एशियन चैंपियनशिप चल रही है रेसलिंग की, जो कि 9 मई से लेकर के 13 मई तक चलेगी, जिसके पहले दिन कल हरप्रीत सिंह ने कांस्य पदक जीता। पुरुष वर्ग में ग्रीको रोमन पहलवान दीपक और अनिल कुमार तथा महिला वर्ग में रितु कांस्य पदक के मुकाबले में उतरेंगे। और अब बात करते हैं टेनिस की। सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच मैड्रिड ओपन के तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं। जोकोविच ने दूसरे दौर के मुकाबले में स्पेन के निकोलस अल्मागरो को हराया। और आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में आज मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब का मुकाबला होगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अब से थोड़ी ही देर में खेला जाएगा। और अब आपको लेके चलते हैं मैडम टुसॉट वैक्स म्यूजियम, जिसकी शाखाएं पूरे विश्व में हैं और अब वो दिल्ली में अपनी शुरुआत करने जा रहा है, जिसमें 1983 विश्व कप विजेता कपिल देव का पुतला अब देखा जा सकता है। भारतीय टीम के फॉर्मर ऑलराउंडर कपिल देव ने आज दिल्ली में स्थित मैडम टुसॉट वैक्स आकर्षण के लिए अपने मोम के पुतले का इनॉग्रेशन किया, जहाँ उन्होंने अपने बारे में कहा,
I don't like to talk too much about myself.
मैं अपने बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन किसी की आलोचना करना वाकई एक मुश्किल काम है।
तो आप जल्द ही कपिल देव का मोम का पुतला भी यहाँ देख सकते हैं। खेल समाचारों में बस इतना ही, नमस्कार।
फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये शेर आपने सुना होगा और ये शमा कौन है आप शायद सोच रहे होंगे। ये 4 महीने की नन्ही आयु में बम्बई की एक बच्ची है जिसका नाम है विदिशा वाघमारे, और इन्हें एक नहीं कल बल्कि 6 बार दिल का दौरा पड़ चुका है, लेकिन हर बार इस नन्ही सी जान ने मौत को मात दी है। bbchindi.com पर इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए आप आ सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास समय कम है, चलते चलते सुनते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। भारत की सर्वोच्च अदालत में 3 तलाक से जुड़ी याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। 3 तलाक को कई मुस्लिम देशों में गैर कानूनी करार दिया गया है, लेकिन भारत के अल्पसंख्यक मुस्लिमों में इसे वैधता हासिल है। भारत की पुलिस जस्टिस कर्णन को गिरफ्तार करने में अब तक सफल नहीं हो सकी है। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के जज को अवमानना का दोषी मानते हुए 6 महीने के लिए जेल की सजा सुनाई थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन से अमरीकी रक्षात्मक मिसाइलों की तैनाती रद्द करने को कहा है। इराकी सेना प्रमुख ओटोमान अल गनीमी ने कहा है कि उनकी सेना मुसल में अपना अभियान खत्म करने के कगार पर पहुंच गई है। लंदन में चल रहे सोमालिया कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि सोमालिया में 60 लाख से ज्यादा लोगों को मदद की जरूरत है और 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे भूखमरी के शिकार हो सकते हैं। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचारों के साथ ही हमारे कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। अगली मुलाकात होगी कल सुबह भारतीय समय के मुताबिक 6:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।